परम प्रिय परम पिता शिव की अति प्रिय संतान आध्यात्मिक भाइयों एवं बहनों, विगत दो दिन से हम अपने मानव जीवन के परम उत्कर्ष परम आनंद की अनुभूति के लिए इस ज्ञान सरोवर परिसर में एकत्रित हुए हैं। और जब से आप ज्ञान सरोवर परिवेश में उपस्थित हुए हैं, तभी से एक अनोखी शांति अनोखे सुख का एहसास आपका तन आपका मन कर रहा है, ऐसा अनुभव कर रहे हो ना आप सभी, ऐसा ही अनुभव है ना आप सबका। आज का विषय बड़ा ही रमणीक और समय के अनुकूल है, क्योंकि आज का मानव भौतिकता की अंधी दौड़ में मृत तृष्णा की भांति दौड़ रहा है और उसने अपने मानव जीवन में भौतिकता के माध्यम से कुछ उपलब्धियों को कुछ प्राप्तियों को भी अवश्य प्राप्त किया है। आज के विषय पर विचारणीय बिंदु है कि मानव जीवन क्या है। मानव जीवन भौतिक और पराभौतिक दोनों शक्तियों के समन्वय का नाम मानव जीवन है। तो जब भौतिक संसाधनों की बात आती है, भौतिक सुख और शांति की बात आती है, तो मानव को इस पंच तत्वों की शरीर प्राप्त करने के कारण पंच तत्वों से भौतिकता से उस सुख प्राप्त करने की कोशिशें करता है और उसको प्राप्त भी होता है। जिस प्रकार आज हम देखते हैं मानव ने पंच तत्वों को अपने नियंत्रण में करने की कोशिशें की, जल पर भी उसने नियंत्रण पाया, लेकिन उस जल के विभिन्न खोज अन्वेषण नई नई उपलब्धियों को प्राप्त कर लेने के बावजूद आज वो जल के प्रति चिंतित है कि कल जल जीवन के लिए नहीं होगा। कहने का भाव यह है कि आज मानव ने भौतिक सुख और शांति के लिए पृथ्वी पर अपने मानवीय मूल्यों को छोड़कर भौतिकता की अंधी दौड़ में विनाशी प्राप्ति के लिए भूमि का शोषण, मानवीय मूल्यों का शोषण और अनेक प्रकार के नकारात्मकताओं को उसने प्राप्त किया है। लेकिन वो मां पृथ्वी को आंचल में पलकर उससे सुख और शांति लेकर अपनी असीम सुख शांति को कायम नहीं कर पाया, जिसके परिणाम स्वरूप आज पृथ्वी मां से उसने अन्न प्राप्त किया, अन्न से पोषकता प्राप्त की, इस भौतिक शरीर के लिए उसने पोषण दिया, लेकिन अति सर्वत्र वर्ज्यते के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप आज धरती मां की उर्वरकता कहीं मानव के भौतिक सुख और शांति की आकांक्षा में विलुप्त हो गई। और आज एक प्रश्नवाचक हमारे सामने धरती मां की उर्वरकता के लिए खड़ा हो गया। ठीक इस प्रकार से मानव ने भौतिकता के परिवेश और परिदृश्य में दौड़ लगा लगा कर पृथ्वी को तो भ्रष्टाचार, नकारात्मकता इन सब से दूषित किया ही, आज वह आकाश की तीव्र उड़ान भी कर रहा है और वह सोचता है कि जो उपलब्धियां, जो सुख शांति वह धरती पर प्राप्त नहीं कर सका, शायद वो आकाश में प्राप्त कर सकता है। लेकिन पांचों तत्वों के माध्यम से उसने अपने इस पंच भौतिक तत्व के शरीर को शांति और सुख देने का प्रयास किया, प्राप्तियां भी हुई, लेकिन हाथ में उसको रिक्तता मिली। असीम सुख और शांति, सच्चा सुख और शांति से वे कोसों दूर भागता गया। आज के मानव जीवन में तन है, तन का सुख है, लेकिन वो स्वस्थ नहीं है। कंचन काया के स्थान पर तन का सुख निरोगी काया के रूप में उसको प्राप्त हो रहा है। जो उसका मन था, जो सुमन बनाने के लिए ईश्वर प्रदत्त था, वो मन भी आज नकारात्मकता से, धोखे से, दुख से भरा हुआ है। इस प्रकार आज के मानव के जीवन में तन का सुख, मन का सुख और तीसरा कहा जाता है धन का सुख। आज उसका धन कितना भी वो अर्जित कर ले, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं में वो आर्थिक धन भी, आर्थिक उपहार के स्वरूप धन भी कम पड़ जाता है। वो भी हमें इच्छाओं को तृप्त नहीं कर पाता, संतुष्ट नहीं कर पाता, हमारे जीवन को प्रसन्नता और आह्लाद नहीं दे पाता। अब आता है विषय मानव के दूसरा पहलू। भौतिकता से तो उसने मृग मारीच की भांति सुख और शांति की खोज में दौड़ता रहा, भागता रहा, इच्छाओं का गुलाम बनता रहा और इच्छाएं उसे मृग तृष्णा की भांति भटकाती रही, दौड़ाती रही और कुछ प्राप्ति के बावजूद वह रिक्तता अपने जीवन में अनुभव करता रहा। और फिर मानव जीवन का जो चरम उत्कर्ष है, चरम उपलब्धि है, उसको उसने भक्ति में गाया, अपनी पराभौतिकता को उसने स्वीकार किया कि मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में। कल का जब आप राजयोग शिविर का श्रवण मनन चिंतन और अभ्यास करेंगे तो पाएंगे कि उस जगत नियंता, सर्वोच्च सत्ता, परम शिक्षक, रक्षक, कल्याणकारी परमात्मा के चरण नहीं बल्कि उसकी याद ही वो सुख है, वो असीम शांति का स्रोत है। यदि वो हमारे जीवन में पराभौतिक शक्ति को सिंचन करने के लिए मिल जाता है तो हमारा जीवन खुशियों से, आनंद से, सुख से, शांति से भरपूर हो जाता है। कहा जाता कर्म के परिणाम से मनुष्य वंचित नहीं हो सकता, उसका कर्म उसको उस प्राप्ति की दिशा में ले जाता है। आप सब उपस्थित महानुभावों को देखकर ऐसा ही एहसास होता है कि आपने उस परम पिता परमात्मा से, उस जगत नियंता से अपनी पराभौतिक शक्ति आत्मा का पोषण अवश्य ही पूर्व में प्राप्त किया है और उसके अनुकूल ही आप पुनः इस धार्मिक प्रभाग में अविनाशी सुख और शांति को, सच्चे सुख और शांति को, शाश्वत सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। पराभौतिक सत्ता के विषय में जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो पाते हैं जो कहा जाता है कि रानी के गले में हार पड़ा था और वह सब जगह ढूंढ रही थी। ठीक इस प्रकार शांति हम सब पराभौतिक आत्मशक्ति का सच्चा श्रृंगार है। शांति आत्मा का स्वधर्म है। शांति आत्मा का निज गुण है। जब हम अपने आप को सत्य चैतन्य अजर अमर अविनाशी शाश्वत सत्ता स्वीकार करते हैं तो वो जैसे रानी हार को बाहर ढूंढ रही थी लेकिन हार उसके गले में था, ठीक इस प्रकार शांति स्वधर्म के रूप में, मूल गुण के रूप में, सत्य स्वरूप के रूप में हमारे अंदर में है। हम जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, उस आत्मा के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, संस्कारों के अंदर शांति निहित है। आपने देखा होगा कि जो मानव अशांत है, क्रोध में है, यदि उससे पूछा जाए कि आप क्रोधित क्यों हैं, अशांत क्यों हैं, तो उसके पीछे भी वो यही जा बताएंगे कि मुझे शांति चाहिए, क्योंकि पराभौतिक शक्ति आत्मा का मूल गुण शांति ही है। जिस प्रकार हम जल को कितना भी गर्म कर लें, लेकिन उसको गर्म करने के पश्चात हम रखेंगे तो जल शीतल हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपने सत्य सनातन स्वरूप को भूल गए, पराभौतिक सत्य को भूल गए, तो हम अपने आप को अशांत, क्रोधित, चिड़चिड़ा, भटका हुआ अनुभव करने लगे। पुनः ये ज्ञान सरोवर, ये धार्मिक प्रभाग का सत्र आपका आवाहन करता है कि मानव जीवन जो दो शक्तियों से मिलकर बना है, आज तक हम भौतिक शक्ति के पीछे ही अपने जीवन को व्यतीत करते रहे। अब समय आया है, हम जन्म से ही जिस पराभौतिक शक्ति आत्मशक्ति के माध्यम से जीवन को जी रहे थे, अब उसकी तरफ अंतर्मुखी होकर हम ध्यान दें, अटेंशन दें, और जो शांति का हार चिर अविनाशी हमारे पास है उसको हम डेवलप करें। जिस प्रकार हमें भौतिक शरीर के पोषण के लिए प्रतिदिन अन्न देना आवश्यक है, उस अन्न से ही हमारे तन की पोषकता होती है और मन का निर्माण होता है, ठीक इस प्रकार हमें अपनी सत्य चैतन्य शक्ति आत्मा को प्रतिदिन आध्यात्मिक चिंतन देने की आवश्यकता है। जितना हम स्वाध्याय करते हैं, जितना हम आत्म निरीक्षण करते हैं, जितना हम आत्म अवलोकन करते हैं, उतना हमारी पराभौतिक शक्ति अपने मूल स्वरूप में, शांत स्वरूप में स्थित होती जाती है, क्योंकि मन को श्रेष्ठ विचारों का, सकारात्मक विचारों का भोजन चाहिए, और वो भोजन मिलता है हमारी आत्मा को आध्यात्मिकता के द्वारा। आध्यात्मिकता अर्थात उस सचेतन आत्मा का मनन और चिंतन। आध्यात्मिकता माना अपने आत्म तत्व को, आत्म संचेतना को निरंतर चेतना से जोड़कर रखना, और उस के माध्यम से जो हमारा मन शांत होता है, रचनात्मक होता है, शक्तिशाली होता है, उसका प्रभाव हमारे भौतिक शरीर पर, भौतिक जीवन पर पड़ता है। आवश्यकता है आज दिन तक हम अपने पराभौतिक शक्ति आत्मा को तन के द्वारा चलाते रहे। तन ने जो आदेश हमारी आत्मा को दिया उसके माध्यम से हम इंद्रियों को संचालित करते रहे और जिसका परिणाम अशांति और दुख मिला। आज आवश्यकता है कि आत्म शक्ति उस जगत नियंता परम सत्ता के निर्देशन को सुने, मनन करे, चिंतन करे, अभ्यास करे और उत्तरोत्तर प्रगति को करे और उसका प्रभाव हमारे तन पर, हमारे मन पर, हमारे संबंधों पर, हमारे वातावरण पर उसका प्रभाव पड़े। आज हम जो वस्तुओं से शांति प्राप्त करते हैं वो अल्पकाल की शांति मिलती है, वस्तुओं से, साधनों से जो हम सुख प्राप्त करते हैं वो क्षणभंगुर प्राप्त होता है, जिसे कहा जाता है काग विष्टा समान। टेम्परेरी उसमें बहुत आकर्षण है, बहुत चमत्कार है, बहुत वो अपने वशीभूत करते हैं, लेकिन लंबे समय तक उपयोग करने पर हम पाते हैं कि हमारी आंतरिक ऊर्जा, बाह्य ऊर्जा, बाह्य संसाधन, आंतरिक संसाधन, उन सब का क्षरण हो रहा होता है। आज हम देख रहे हैं तन का क्षरण आयु के चक्र में हो रहा है, मन का क्षरण स्वभाव के परिवर्तन में हो रहा है, लेकिन जब हमारे जीवन में आध्यात्म की शक्ति जुड़ जाती है तो ये हमारा तन कच्चन काया बन जाता है। कहा जाता है कि जब आत्मिक सुख, सच्चा सुख मिलता है तो उससे हमारी आयु भी रुक जाती है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि मन का कार्य है सोचना। जब हमारा मन शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, रचनात्मक चिंतन करता है तो उसकी श्वास की गति बहुत धीमी हो जाती है, अर्थात हमारी आयु लंबी हो जाती है। आज मेडिकल साइंस भी इस बात को प्रयोग करके बताती है कि हमारे जितनी भी व्याधियां हैं, जितने भी शारीरिक कष्ट हैं, उनमें 80% हमारा मानसिक क्लेश, मानसिक नकारात्मकता के कारण ही होते हैं। आध्यात्मिकता, प्रभु चिंतन, आत्मचिंतन इस 80% के विकृत मन को शुद्ध, शांत, शीतल और शक्तिशाली बना देता है। जब हम आत्मिक चिंतन के साथ, आध्यात्म के साथ अपने जीवन को जीते हैं तो हमारी निरोगी काया, दीर्घ आयु और जीवन लंबा हो जाता है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो निश्चित ही प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और हमारे इर्द गिर्द का वातावरण भी शांत और शक्तिशाली हो जाता है। जिससे भी हम मिलेंगे, जिससे भी हम आदान प्रदान करेंगे वो सकारात्मक होगा, वो शांतमय होगा, वो सुखमय होगा, वो आनंदमय होगा। आप देखेंगे, मुझे याद आती एक छोटी सी कहानी कि एक गुरुजी ने अपने दो शिष्यों को शिक्षा में पारंगत किया और पारंगत करने के पश्चात उन्होंने शिष्यों को कर्म क्षेत्र के लिए तैयार किया। शिष्य जाने लगे, उन्होंने गुरुजी से कहा कि हमारे लिए जाने से पूर्व कोई आज्ञा हो तो दीजिए। तो गुरुजी ने दोनों शिष्यों को कुछ टोकरी में पुष्प दिए और उन्हें आदेश दिया कि आप अपने मार्ग पर जिधर से जाएंगे उन पुष्पों को आप उनको देना जो मुस्कुराते हुए हो, और वापस आकर बताना कि आपको ऐसे कितने लोग मिले जो अपने जीवन से सुख शांति से भरपूर और मुस्कुराहट से युक्त थे। दोनों ही शिष्यों ने बड़ी ही आदर और सम्मान के साथ गुरुजी की आज्ञा को शिरोधार्य किया और अपने कर्म क्षेत्र के पथ पर निकल गए। एक शिष्य की पूरी टोकरी फूलों की खाली हो गई, एक शिष्य की टोकरी से पुष्प एक भी किसी को दे नहीं पाए। गुरुजी ने परीक्षा के तौर पर वापस बुलाया था तो दोनों ही शिष्यों से इसका कारण जानना चाहा। एक शिष्य की टोकरी पुष्पों से खाली हो गई, दूसरे शिष्य की टोकरी फूलों से एक भी पुष्प नहीं गया, तो गुरुजी ने दोनों को बुलाकर पूछा। तो आप सब जानते हैं उसका कारण क्या था। जिसके पुष्प सारे चले गए उसने अपने गुरुजी से जो शिक्षा को जाना था, प्राप्त किया था, उसको अपने चेहरे से प्रदर्शित किया। प्राप्तियां छुपती नहीं है, जो प्राप्ति होती है उसके मस्तक से, वो उसके नैनों से, वो उसके आचरण से, उसके वाइब्रेशन से प्राप्त होती है। उन प्राप्तियों से आह्लादित होकर उसको जो भी मानव मिलता था वो उसको मुस्कुराता था, और उस मुस्कान को देखकर सामने वाला प्राणी भी मुस्कुरा जाता था और वो उसको गुरुजी के आदेश प्रमाण उस पुष्प को दे देता था। ऐसा करते करते उसके सारे पुष्प बहुत जल्दी सभी को मिल गए और वो खाली पात्र लेकर गुरुजी के पास आए। दूसरा भी शिष्य था, एक सी शिक्षा दोनों को मिली थी लेकिन उन्होंने उसे थ्योरी में लिया था, प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं किया, वो अपने जीवन से उसको प्रदर्शित नहीं कर पाए और लोगों की उदासी, निराशा, अशांति को खुशहाली में परिवर्तित नहीं कर पाए, जिसके कारण उनके सारे पुष्प वापस आ गए। कहने का भाव है कि मानव जीवन की सुख शांति हमें ग्रंथों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, सामाजिक संतों के द्वारा, अनेक प्रेरक कथाओं और शिक्षाओं के द्वारा प्राप्त है। लेकिन आवश्यकता है उनको मनन करके, उनको चिंतन करके, उनको अपने कर्म में लाकर, व्यवहार में लाकर, उनसे अपने ओरे को प्रकाशित करके वर्तमान समय में चहुं ओर उनकी रोशनी को फैलाने की। जब हम इस कार्य को करते हैं तो जिस प्रकार हम स्थूल धन को देखते हैं, यदि हम उसको खर्च करते हैं तो वे बढ़ता है, मल्टीप्लाई होता है। इसी प्रकार हम आत्मिक गुणों को जब अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं और अनेक आत्माओं को उसके अनुभव सुनाते हैं, अनेक आत्माओं को उन सच्चे शांति, सच्ची खुशी को प्रदान करते हैं, तो वे भी हमारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कहा जाता, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाता। विनाशी धन घटता है और अविनाशी आत्मिक सुख, आत्मिक शांति जितना हम अपने जीवन में लाते हैं और अनेक बंधु बांधवों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने क्षेत्र को, कार्य में हम उन्हें लगाते हैं, तो वे हमारे अविनाशी होकर कई गुना हमें वापस मिलते हैं। तन मन और धन, संबंध और संपर्क सभी खुशहाल बन जाता है, सुखी बन जाता है। आज चहुओं का दुख दर्द इस बात का इशारा करता है कि कहीं हम कुछ चीज को भूल गए हैं और उसकी स्मृति प्राप्त कराने के लिए और प्राप्त करने के लिए हम और आप यहां एकत्रित हुए हैं। आप सबको ये बताते हुए परम हर्ष होता है कि कल्याणकारी पिता परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर हम मानव आत्माओं को इस अलौकिक सुख को बांट रहे हैं। आज आप जो देख रहे हैं ये उस सुख का ही परिणाम है कि कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ण, किसी भी वर्ग से आती है, किसी भी आयु का होता है, किसी भी रुचि का होता है, लेकिन इस धरनी पर पांव रखते ही उसको आत्मिक सच्चा सुख और आत्मिक सच्ची शांति की अनुभूति होने लगती है। यहाँ के परिवेश में वो तरंगे हैं, वो वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि यहाँ वो लंबे समय से आत्मिक सुख और शांति का उद्गम इस स्थल को बनाया हुआ है। यहाँ प्रतिदिन वो अध्ययन, मनन, चिंतन और अभ्यास, सबसे बड़ी चीज है अभ्यास। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता में भी जब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं तो वो यही बताते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, दो बातों को आप जीवन में ले आओ, एक अटेंशन, एक अभ्यास। हम चिंतन तो करते ही हैं, लेकिन उस चिंतन में पराभौतिक सत्य का चिंतन आ जाए, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सारी वसुधा अपना परिवार है, कल्याण की भावना हमारे मन में आ जाए, तो देखिए आपका जीवन सुख शांति से भरपूर हो जाता है। हम सुनते तो आए हैं, कहते तो आए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। लेकिन जब प्रयोग करते हैं तो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत इस मंत्र को खंडित कर देती हैं, और जिसके कारण ही हमारी सुख शांति दुख अशांति में बदल जाती है। लेकिन आध्यात्मिकता का चप्पू, आध्यात्मिकता हमें निंदक को भी निकट रखकर आंगन कुटी छवाने की क्षमता दे देता है। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। वो पॉजिटिव थिंकिंग, वो राजयोग का अभ्यास हमारी अंतर जगत की शक्तियों को सुषुप्त कर देता है, जागृत कर देता है, जो हमारे अंतर जगत में सोई हुई है। हम चाहते हैं सबका भला चाहें, सबका भला करें, लेकिन चाहना एक, कर्म दूसरा हो जाता है, क्योंकि भौतिकता पर पराभौतिकता की विजय नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। ये देह अभिमान हमारी आत्मा को अपने सच्चे सुख और शांति को प्राप्त नहीं करने देता, और जिसके कारण ही हम मानव जीवन, जो सर्वश्रेष्ठ जीवन है, जो सर्वोत्तम जीवन है, उसकी सर्व आनंद से हम दूर हो जाते हैं। लेकिन परम हर्ष का विषय है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आज लाखों नर नारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्म चिंतन की विधा से, आध्यात्म ज्ञान के मनन चिंतन से घर गृहस्थ में रहते हुए समाज के विभिन्न क्षेत्रों के कार्य व्यवहार को करते हुए अपने जीवन को खुशी से, सुख से, शांति से, विभिन्नता में एकता से, विषमता में समता से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और वो प्राप्ति ही उनको शक्ति देती है। आत्मशक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। आत्मशक्ति से ही हम अपने परम प्रिय परमात्मा जिसे हम कहते हैं तुमरी कृपा से सुख घनेरे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, उस परम पिता परमात्मा से जब हम जान जाते हैं, स्वीकार लेते हैं कि वो कल्याणकारी पिता परमात्मा मुझ आत्मा बालक के लिए इस सृष्टि रंगमंच पर पधारे हैं, मुझ आत्मा को अविनाशी सुख शांति से जन्म जन्मांतर की झोली भरने आए हैं, तो उस परमात्मा के सच्चे सुख और शांति से हमारा जीवन आनंद मगन हो जाता है और वो आनंद मगन जीवन के सन्मुख भौतिकता के सुख तुच्छ लगने लगते हैं, साधारण लगने लगते हैं, अथवा उसमें रहते हुए भी उनके प्रभाव से हम मुक्त हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि राजा जनक के सुंदर महलों को देखने के लिए नारद जी को संकल्प आया, तो राजा जनक ने कहा महल अवश्य देखो, लेकिन ध्यान रखना दीपक बुझ ना जाए। जब वो आए महलों को देखकर तो उनसे पूछा कैसे थे महल, तो उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान दीपक पर था। महल कैसे थे? जगत नियंता परम प्रिय परमात्मा ने आत्मशक्ति के माध्यम से इस भौतिक तन पर भौतिक जगत को जीने के लिए हमें जीवन शैली दी थी, लेकिन आज हम आत्म दीपक को जगाए रखने का ध्यान भूल गए और भौतिक जगत के इस पंच तत्वों के महल में ही घूमते रहे। पुनः समय की पुकार, पुनः आप संत महात्माओं के मार्गदर्शक बनने की पुकार परम पिता परमात्मा ने आपको पुकारा है कि आप अपना आत्म दीपक जगाएंगे, उस परम पिता परमात्मा के दिए हुए शक्ति को और संबंध को निभाएंगे, तो आपके साथ अनेकों का जीवन भी आत्म ज्योति से जग जाएगा और ये तन रूपी महल और ये संसार रूपी महल जीते हुए भी, देखते हुए भी, कार्य करते हुए भी इसके प्रभाव से हम मुक्त हो जाएंगे। और जब वो मुक्त अवस्था हमारी होगी तभी हम अपने आप को मानव जीवन के सच्चे सुख से, इंद्रियों के सुख से परे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। तभी हम भौतिकता की चकाचौंध से बचकर उस सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति को अपने जीवन में कर सकेंगे। तभी हम अपने जीवन में वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कोई भी जग में पराया नहीं, हम एक पिता की संतान हैं, एक ही घर के वासी हैं, एक ही मूल लक्ष्य से आए हैं और वापस हमको उन्हीं लक्ष्य को प्राप्त करके लौटना है। ये स्मृति, ये चिंतन, ये अनुभूति हमारे जीवन को तो सुख शांति से भरपूर बनाती ही है, लेकिन जिनके संपर्क में हम आते हैं, जिनके साथ में हम आते हैं, जो हमारे संबंध हैं, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, उस पर भी हम इन पवित्र प्रकंपनों को फैला सकते हैं और वही मानव जीवन की सच्ची सुगंध है कि हम खुद प्राप्त करें और अनेक आत्माओं को भी प्राप्त कराएं। आज यदि हम अपने जीवन को संपन्न और खुशहाल देखना चाहते हैं तो प्रातः जगने से लेकर रात्रि सोने तक हम अपने आत्म स्वरूप को निहारते रहें, आत्म चिंतन को करते रहें, तो हम पाएंगे कि हमारा तन पर नियंत्रण आत्मा का हो जाता है, हमारी वृत्ति आत्मिक बन जाती है, हमारी दृष्टि आत्मिक बन जाती है, जिसके लिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। भाई भाई अर्थात आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति। ऐसा नहीं कि बहनें नहीं है, लेकिन बहनों के तन को भी चलाने वाली शक्ति आत्मा है, भाइयों के तन को चलाने वाली शक्ति भी आत्मा है, और आत्मा वृत्ति और आत्मिक दृष्टि ही शीतलता की प्राप्ति कराती है, शांति की प्राप्ति कराती है, शांति की अनुभूति कराती है, और वो शांति ही हमें अविनाशी सुख देती है। अविनाशी सुख अर्थात परमात्मा पिता से मिलन। मानव होकर यदि ईश मिलन नहीं हुआ तो हमारा जीवन अपूर्ण है, असंतुष्ट है, कष्टों से भरा है। परमात्मा पिता को कहा जाता है दुख हरता सुख करता। जब आत्मा का मिलन परमात्मा पिता से होता है तो उसके जीवन के दुख दर्द कष्ट स्वतः ही भागते लगते हैं, दूर होने लगते हैं। जैसे रोशनी के आते अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा पिता से आत्मा का मिलन होते ही, आत्मा का मिलन पर आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ते ही दुख अशांति कलह कलेश नकारात्मकता काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये दूर चले जाते हैं। और हमारी दुख अशांति का कारण यही है, और हमारी सुख शांति का आधार आध्यात्मिक जगत में आत्मिक चिंतन से परमात्मा मिलन ही है। तो आइए कुछ पल के लिए हम अपने निज स्वरूप में स्थित हों और उस सच्ची आत्मिक शांति के लिए, सच्चे परमात्मा सुख के लिए इस मानव जीवन को, अपने जीवन से रहे शेष पलों को, रहे शेष जीवन को हम अर्पित कर दें कि परमात्मा पिता का ये जीवन सौगात है, प्रभु की अमानत है ये तन ये मन ये जीवन ये श्वासें। अब हमें अपने रहे शेष जीवन को सृष्टि पर आए हुए उस परम सत्य परम प्रिय जन्म जन्मांतर के सच्चे मात पिता को अर्पित करना है, मेरी नैया उसके हवाले। गीत में गाते हैं नैया जरा सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को डरे। तो अब वो पल आ गए हैं हमारे जीवन के कि हम अपनी जीवन की बागडोर, अपने जीवन को उस प्रभु को अर्पित करें, और प्रभु को अर्पित करके देखें कि हमारा जीवन किस प्रकार, जैसे बालक निश्चल नकारात्मकता से मुक्त होता है, वैसे ही हमारा जीवन छल रहित स्वार्थ रहित दुख रहित अशांति रहित बन जाएगा। हम प्रेयर तो करते हैं, हम बालक हैं वो पिता है, लेकिन बालक स्वरूप में स्थित हो जाए। बालक की मुस्कान, बालक का सच्चा भाव उसके चेहरे पर दिखाई देता है, जिसके कारण बालक हर किसी को आकर्षित करता है। अब मुझे अपने जीवन को अपने बाल स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित करके उस परम प्रिय परमात्मा को ये जीवन अर्पित करना है, और फिर उस जीवन को जीकर देखना है कि कितना सुख कितनी शांति कितना आनंद मिलता है। रहेंगे हम उसी परिवार में, खाएंगे हम वही भोजन, पहनेंगे हम वही वस्त्र, उन्हीं संबंधों में हम आएंगे, लेकिन हमारी न्यू नॉलेज होने के कारण, आध्यात्मिक नॉलेज होने के कारण, आत्मचिंतन का ज्ञान होने के कारण हमारी वृत्ति और दृष्टि बदल जाएगी। हमारा घटना को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा, व्यक्ति और परिस्थिति को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, और हमारी नए मूल्यों की धारणा, हमारे जीवन में हो जाएगी। जब हम आध्यात्मिक बीज अपने मन की धरनी पर बोएंगे तो हम सत्य सनातन मूल्यों की फसल को, विल पावर, स्टेमिना को बना पाएंगे, जिससे हमारी चाहना और कर्म एक हो जाएंगे और वही शक्ति हमें परमात्मा की शक्ति को प्राप्त करने में मदद करेगी। तो आइए कुछ पल हम आत्म शांति, परमात्म शांति की किरणों के माध्यम से प्राप्त करें और आत्मिक सुख के साथ उस परम सुख के दाता परमात्मा पिता से अपने मन की झोली को, अपनी बुद्धि को उससे भरपूर कर लें, ताकि ये हमारा जीवन सुख और शांति के आनंद से भरपूर हो जाए। तो आइए कुछ पल उस अनुभूति में हम खो जाते हैं। मैं आत्मा, शांत स्वरूप, शांति, मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति मुझ आत्मा का निजी गुण है। मैं आत्मा, अपने निज गुण में शांत स्वरूप में स्थित हूं। मैं आत्मा, परम सत्य, परम पिता परमात्मा की संतान, परमात्मा पिता शांति के सागर है। मैं आत्मा, शांति के सागर, परम पिता परमात्मा से असीम शांति की किरणें प्राप्त कर रही। मैं आत्मा, परम पिता परमात्मा से अविनाशी सुख प्राप्त कर रही हूं। मैं आत्मा शांत हूं, इस शांति की शक्ति को मैं आत्मा अपने तन की भौतिक शरीर की कर्म इंद्रियों पर प्रवाहित कर रही हूं। शांति सागर से प्राप्त असीम शांति की शक्ति इस संपूर्ण भौतिक जगत में प्रवाहित कर रही हूं। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं चहुं ओर सुख और शांति, फैल रही है। प्रकृति के पांचों तत्व भी आत्मिक शांति से शांति का अनुभव कर रहे हैं। जहां शांति है वहां सुख भी है। मैं आत्मा निरंतर इस अभ्यास को करते हुए स्वयं भी शांत और सुख में बनती जा रही हूं। और सर्व विश्व की आत्माओं को भी इस सच्चे सुख और शांति को प्रदान कर रही।